पुल्लिंग मत नहीं पुल्लिंग है, दास में तो पुल्लिंग है,
धर्म ने है
स्थित है स्त्री
हिंदु पुरुष बोला अभी पुलिस के लिए हमने स्त्री बोलाए
तो उसी तरह से कर रहे हैं। जैसे इसका स्त्रीलिंग शब्द का यहाँ पर नहीं कहा, बंसी और मूर्ति शब्द का उल्लेख नहीं किया, इसलिए बेणु शब्द से इसका उल्लेख, बेणु माने पुरुष, उसमें भी अलग अलग बेणु का मूर्ति का और बंसी का अलग अलग नाम और कुछ सामने से बजाई जाती है ऐसे पता है वो एक होती है और एक ऐसे बजाई जाती है, उसमें भी अगर रंत्र का भेद होता है, किसी में सात होता है किसी में चार या पांच होता है, और अंगुली कितने अंगुली पर वो छेद रहेगा कुछ लंबी और फिर छोटी का भी भेद होता है। उसमें भी अगर वंश भी एक तरह की नहीं, मणियों की बनती है, बांस की बनती है और सब द्रव्यों की बन सकती है, सोने की भी बनती है, हो सकती है तरह तरह की चीज, बांस में जो कोमलता आएगी और किसी चीज में नहीं
है।
और जैसे मृदंग आजकल सब पीतल, हमारे गुरु जी ने पीतल का भी बनाया ताकि ये सब अच्छे अच्छे नौसिखी आज तोड़ देते हैं पैर, पहले कहा जैसे अच्छा पीतल का बना, तो पीतल हमारे यहाँ पर एक रखा है गुरु जी का बनाया हुआ पीतल का वो मृदंग है, बहुत भार है बना दिया। ऐसे ही ये सब चीजें बनती हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं हिमाचल पुरुष जाति है इसलिए, किंतु इन्होंने किया क्यों, ये पुरुष का भाव रखता है, ये दिन क्या रखता है, दामोदराधर सुधाम अति गोपी का नाम दामोदर के अधर पर जो कुछ सुधा है घूमते स्वयं जदवशी सरसंधन, जो कुछ भी रस है उस सबको संपूर्ण रूप से बिना और शेष रख के सबको सम्पन्न है। किसका यह अधिकारी कौन है, केवल मात्र हम लोग हैं, गोपी का नाम सुधाम अपि गोपियों के लिए ही एकमात्र सुधा है, किंतु ये हम लोगों को अंगूठा दिखलाकर और हम लोगों के सामने चोरी करके नहीं, क्या करता है झूठ बन कर दिखलाकर और मान करता है जैसे गोपिका का किसलिए, इसलिए कृष्ण गोप है, गोप जाति का है, कृष्ण के ऊपर में अधिकार करना, इसलिए हम नीति अधिकार हैं, हम इसलिए हम लोगों का अधिकार है। किंतु हम लोगों को देखते देखते ये वेणु अतर सुजाता संपूर्ण रूप से पान करता है, अतंत्र दृष्टता के साथ में इसलिए स्वयं अकेले दो चार लेकर के नहीं, अकेले और हम लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, और हम लोग को धिक्कार देता हुआ मैंने कुछ भी नहीं गिनता, और हम लोग के सामने में राष्ट्र होकर के धृष्टता के साथ ये पान देखो तो सही, हृदयों त्रिस्पर्श, हृदयों मैंने नदियां सरोवर तालाब नदी मैंने जहां पर पानी में कमल होता है, ये इसी से ये बांस पहले था, उस बांस के वंश में ये उत्पन्न हुआ है। माता कौन है, हृदय सरोवर नदियां इत्यादि जिसके पानी पी करके जिसके दूध पी करके ये इसलिए माता के समान इस वो कैसी है, हृदयों हृष्ट बड़ी प्रसन्न आज हो रही है कि आज हमारे वंश में हमारे वंश का कोई कृष्ण के अतरों पर बैठ करके जो समस्त संगों में सबसे श्रेष्ठ है आज हमारे वंश का कितना नाम है प्रतिष्ठा हो रही है, हमारे वंश का कोई एक लड़का और उसको पान कर रहा, वाह, इसलिए वो प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के क्या हुआ, रोमांच हो गया। रोमांच होना मैंने कमल के फूल, ये हुआ रोमांच। और मुमुक्ष सर्वो जथा लिया, जथा आर्या, आर्य आर्या माने, और जो उसके पंच के और भी स्त्रियां या पुरुष इत्यादि होते हैं, तो उसके लिए बताया मुमुचु। मुमुचु माने छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, अश्रु और विश्वत सचो, फूलों में, वृक्षों में, लताओं में, ये सब सुंदर सुंदर फूल खिले गए हैं, ये रोमांच। और पेड़ों से मधु की धारा बह रही है, जैसे नीम से नीम का रस छूटता है, और पेड़ों से आम से मधु पत्तों में छपता है, ऐसे ऐसे वृक्षों से ये सब करते हैं, विशेष करके बसंत ऋतु में ये सब झड़ते हैं। तो ये मानो आंखों से आंसू छोड़ रहे हैं, माने क्या, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आज हमारे कुल में एक ऐसा लड़का पैदा हुआ जो कृष्ण की संपूर्ण रूप से सेवा करता है, सब लोगों को हटा करके अकेले किसी दोए के साथ में और ये सब पान कर रहा है, आज तक किसी को ये लाभ नहीं। इसलिए कहते हैं गोपी, ऐसे ही हमको दिखला करके, अंगूठा दिखलाकर, हम लोगों के सामने तुच्छ दिखलाकर, जोर से हटा करके और पान, मतलब इसका क्या है, आज ही अभी किसी न किसी तरह से इसको चोरी कर लेना चाहिए, जो भविष्य में ऐसा काम न कर। इसलिए सब करके बातचीत करके ये ठीक करने लगी, ये अब सहा नहीं जाता इसका। यदि गोपी कोई होती तो कोई बात नहीं, और कोई दूसरा बात दूसरे होते तो कोई बात नहीं, ये जिसमें प्राण नहीं है, बांस सा, और वृक्षों में भी बांस, और ये हम लोगों के सामने ऐसी दुष्टता कर रहा है, इसलिए हमसे अब कहा नहीं जाता, इसको अब चोरी कर लेना ही उचित है, ये कर करके और बात कर रहा। तो कहते हैं कि क्या आचरण किया, यदि हम लोगों को पता लग जाए तो हम लोग भी ऐसा ही आचरण या तपस्या या साधन भजन करके कृष्ण की ऐसी सेवा करें, हम लोग उसमें क्या शिक्षा है। यदि किसी प्रकार से हम लोग भगवान की सेवा कर सके तो हमारा जीवन का सब कुछ स्वास्थ्य, जीवन सफल, हम लोग वही साधन करेंगे जो हमारे पूर्व आचार्यों ने करके कृष्ण को उस रूप में पाया। अब हमारे सबसे पहले हमारे आचार्य कौन है, जो उनको पाया दंडकारण्य निवास, और स्तुतियां हमारी भी आचार्य, हम इनको देकर के साधन, ये पहले वाले, और पीछे वाले हमारे रूप रघुनाथ गोस्वामी ने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, चलो भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि ने, कृष्णदास कविराज, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि ने जैसे साधन भजन करके, अब दोनों में भी हमारे लिए श्रेष्ठतम कौन है, पहले वाले की अपेक्षा परवर्ती आचार्य, इसलिए परवर्ती आचार्य में रूप गोस्वामी के लिए रूपांग वैष्णव जो हो गए हैं, जैसे साधन भजन किए हैं उन लोगों ने वैधि और देव और राधानुगा भक्ति की बात बताई। उन्होंने कहा राधानुगा भक्ति बिना वैधि भक्ति के साधन का नहीं होगा, ऊपर से तुम्हें वैध भक्ति करना ही पड़ेगा, निष्ठा में केवल अंतर होता है, साधन के ऊपर में कोई अधिक भेद नहीं होता, कुछ थोड़ा सा होता है, जैसे रुक्मिणी इत्यादि काम करो, द्वारका में जाने का भाव, ये सब नहीं, या और भी बहुत से कुछ। इसलिए हम लोग रूप घोषाने के बदलाए गए साधु पत्र से हम लोग खबर कर रहे भक्त विनोद ठाकुर जी एक और खूब करते हैं उसी का, धन्याश्म मूढ़मतयोपि हरण्येता जानन्दनं कामुपात्रविचित्तदेशम् आकर्ण वेणुरंतम सह कृष्णता पूजांगदौ विरचितं प्रणयावलोकनम्। अच्छा उसको तो देखा एक रूप से वेणु को प्रतिपक्षी के रूप में देखा, इनको प्रतिपक्षी नहीं देख रहे हैं, उसमें भी एक अंतर्निहित भाव सीखा है। हम लोग ऐसा आचरण करें जो बंसी बन जाए, बांसपुर में हमारा जन्म हो जाए और बांस उस बांस में से निकल करके जब हम आए ठीक बंसी के रूप में, तो उसी को काट करके कोई बंसी बना और वो कृष्ण के हाथों में जल्दी पहुंच जाए तो हमारे जीवन यही भाव। यहां पर भी अच्छा इसमें हम लोग वैष्णव और गुरु की जो सेवा करने वाले थे, जैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने सेवा की है रूप रघुनाथ की, सनातन गोस्वामी की रघुनाथ दास रूप गोस्वामी, जैसे इन्होंने सेवा की है स्वरूप दामोदर की, जैसे गोविंद ने सेवा की है चेतन, जैसे जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी की सेवा की, ऐसे ही सेवा करने के लिए हमारे अंदर में अभिलाष है। जब ऐसी अभिलाषा नहीं जगे जो कैसे उन लोगों ने सेवा की, हम लोगों को ऐसे सेवा करनी चाहिए। कुछ दिन सेवा करने के बाद में फिर वह सब सेवा छोड़ छोड़ करके बस समाप्त हो गए। इसलिए हम लोगों के सामने हजारों लोग आए, हजारों लोग चले गए, इसलिए हम लोगों को ऐसे कैसे उन लोगों ने सेवा की, गुरु को कैसे उन लोगों ने समर्पण किया, इस तरह से हम लोग साधन कर रहे हैं। यहां पर कह रहे हैं देखो तो एक मूल व्यक्ति भी भगवान का भजन कर सकता है, वहां से बतला है स्थावर जंगम भी भगवान की सेवा कर सकता है यदि वैसी भावना रहे, और स्थावर जंगमों से अब कुछ श्रेष्ठ की तरफ नहीं जाए। वहां पर दिखलाया कि पशु पक्षी की पतंग इत्यादि वृक्ष और लताएं सरु इत्यादि भी कैसे भगवान की सेवा करें। जब तक इस सेवा को कहते हैं साधारण रूप में प्रथम शांत भाव से सेवा, मुरली कौन सा पांचों में से कौन सा भाव का है, शांति मुरली वेणु गाभी नदी का उपकु वृक्ष लता ये सबको शांत कहा है, किंतु ये सब वैकुंठ के लिए वृंदावन के लिए नहीं,
सब
उनके लिए नहीं। वृंदावन में कोई शांत रस का नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा।
चेतन चेतन में इसलिए चार भाव दिया, मुई नाचा हूं त्रिभुवन कोई कितने बुला चट्टे भाव दस सौ भाव,
इसलिए वृंदावन में सब शांत रस की का कोई प्रकाश नहीं है, सब किंतु प्रकाश नहीं है। मैं तो होगा कि वृंदावन में अभाव रह गया, इस दिन प्रश्न पूछा ना भगवान ने ऐसा क्यों बनाया जीवों को जो भगवान से जीव लोग विमुख हो जाए और जीवों के इतना आकर्ष हो, तो उसी के लिए बता है भगवान यदि ऐसी नहीं करेंगे ऐसी लीला तो ये लीला का भाव हो जाएगा, ऐसा क्यों ना करें क्यों नहीं करें। इसलिए भगवान जीवों को ऐसी अवस्था तक के लिए उनको करके और उसी के अनुरूप में अपना अवतार लेकर के और उन लोगों को कल्याण करने के लिए वैसे वैसी लीला करते हैं और अंत में ऐसी लीला करते हैं वहां तक सभी अधिकारों के उपयुक्त यहां तक कि भावावस्था महाभाव अवस्था तक ही लीला करते हैं, ये जीवों को विभिन्न कल्याण करते हैं। यदि ऐसा नहीं करें तो उनकी लीला में कमी हो जाएगी, इसलिए भगवान ऐसे इसलिए धन्यास्मूढ़ मतयो अरण्य अरे चित्तों को तो छोड़ दो, ये बन की जो हिरणी है बुद्धिमत्ता में सबसे कम की है, मूढ़ है ना। मैं मर जाऊंगी, मैं मारी जाऊंगी, इसका ध्यान नहीं रहता। उसको ये पता नहीं ये वेणु बजा करके आ बह भी आया है बजा रहा है और उसे मैं मारी जाऊंगी ये नहीं समझ। हो सकता है कि कल ही पिछले कल उसका एक कोई साथी वेणु ध्वनि सुनता सुन रहा था, सुनते सुनते तन्मय हो गया और एक बांस का पांच मैंने छोटा सा पतला थोड़ा सा गाड़ दिया है, दो अंगुल तीन अंगुल केवल भार ऐसे ही खड़ा है और उसी को खंभा समझ करके उस पर कुछ आड़ देकर और वो सुन गया। सुनते 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 यही उसका अधिक भार पड़ा वो गिर गया तो उसके पिछले पैरों में मोड़ मोच नहीं होती, ऐसे नहीं मोड़ पाता जैसे हम लोगों का पैर उठ करके खड़े हो जाएंगे, वो लोग ऐसा ही पैर रहेगा। बड़ी मुश्किल से वो सीधा करके पहले दोनों पैर अगले पैर से थोड़ा सा ऊपर उठ करके या ऊपर करके तब उठे हाथ में समय लगता है। जब गिर जाते हैं इतने बह दिया पास ही रहता उठा उठाया और लड़किया से मार करके उसको सिंह के लिए या उसके चमड़े को खत्म कर। इसलिए वो मूर नहीं समझता तो दूसरे दिन फिर ऐसा करता फिर फंस जाता। तो ऐसा कौन होकर हमने पत्नी हिरणियां ऐसा ऐसा मैंने दिखला रहा घर में हिरण थोड़े हैं किंतु वो दिखला रही है भावना के साथ में ये जो कृष्ण जो बंसी बजा रहे हैं और ये हिरणियों को तो देखो कृष्ण बहेलियां हैं और हिरणियां हिरणियों को ग्रहण कर रहे हैं माने हम हिरणी हैं ये भावना। जानंद नंदनम उपात विचित्र वेशम ये हिरणियां आज इनका जीवन सार्थक है जो ये नंद नंदन के विचित्र वेश को उपात पतंत प्रेम के साथ में उनको देख रहे हैं निकट जा करके। बस ऐसे मुख कर दिया कृष्ण बंसी बजा रहे हैं निकट में चली गई किसी चीज का धन है विशेष करके किस लिए धन है। सह कृष्ण सारा कृष्ण सार हिरण होता है पुरुष जाति कोई कहते हैं कृष्ण सार धब्बा उनको इसलिए कृष्ण सार कृष्ण ही इनके सार है ऐसे तो इसके पति मिले हैं। सह वो पीछे पीछे चल रहे हैं और आगे आगे स्त्रियां चली गई कृष्ण के दम निकल और वो पीछे खड़ा हो गया पीछे कहना आगे क्यों नहीं गया उसको प्रेम जितना हिरणियों को प्रेम है उतना उन पुरुषों को प्रेम है इसलिए वो उसको वो देख रहा है। इसको कोई पीछता नहीं मेरी स्त्री है कोई बात नहीं है कृष्ण से प्रेम करती है अच्छी बात है बस एकदम वो भी पीछे से खड़ा है। प्रेम किसको अधिक है उन गोपियों को उस हिरणियों को अधिक प्रेम वो तो एकदम तन्मय होकर के देखे और ये उनकी रक्षा करता है क्यों कि कृष्ण ही उसके जीवन के सार है इसलिए उनके उनका कृष्ण के प्रति प्रेम है इसलिए इनको पीछे से खड़े होकर कहते हैं तुम आनंद से देखो डरने की जरूरत नहीं। क्यों कह रही हैं अच्छा क्या कर रही हूं पूजा गर्भव विरचिता प्रणय आवत निकट जाकर के प्रणय के साथ में अवलोकन कर रहे हैं प्रीति से प्रणय में वो मैत्र प्रणय और सख्य प्रणय जैसा भाव है जो कुछ साधारण रूप में बदने की मैं नहीं होता किंतु उपमा के लिए ऐसा है प्रणय के अर्थात प्रेम स्नेह मां प्रणय इस प्रणय के साथ में अत्यंत प्रकार प्रति के सहित में देख रही है और सुन रही है और इस तरह से प्रणय अलोक के द्वारा कृष्ण की पूजा कर रही है अपनी दृष्टि से उनकी पूजा कर रही तो इसलिए कह रही है वो अहो कहां ये सौभाग्यवान परम सौभाग्यवती ये किरण और उनके पतंत ये कृष्ण को ही सार मानने वाले उनके पति और वो ही पुकार है, जैसा देखो जी भर करके देखो कितना आनंद हो रहा है। और हम लोगों का कैसी दुर्भाग्य है, पतियों की तो बात छोड़ो, पतियों को यदि भाई है कोई छोटे देवर है वो क्या करेगा, वो जाकर के कहेगा देखिए भाई साहब आपकी पत्नी का क्या ये हाल, वो कहें पति और वो दोनों लठिया लेकर के चले आए। हम लोगों को कितना ये कष्ट कर, ननद भी वैसे पति भी वैसे बवा पड़ोसी सब वहां के बैठे सब हमारे विपरीत। यदि कृष्ण से कहीं मिल गए और कहीं गंध घर में लग गया तो घर में हमको मिला और कहां ये हिरणियां, इसे मरकर की हिरणी हो जाना अच्छा, इसलिए अब हम हरिणी होना चाहते हैं। वैसे ही भक्त जब प्रधान महाराज की कथा सुनता है तो क्या सोचेगा, हम महाराज जी कैसे भक्त, बचपन से कितनी उनकी निष्ठा, कैसी निष्ठा, पिता उसको मारने के लिए कितनी यातना दे रहे हैं, कितना कष्ट दे रहे हैं, और वो एकदम स्थिर रूप में भगवान का भजन, कभी इसने भगवान से भी नहीं कहा था ये हमारे पिताजी की बुद्धि पलट गया, उनसे कभी सब पूछता नहीं, और जो कुछ भी इसने किया आग में जलाया, जो कुछ किया सांप से कटवाया, कुछ भी तुमसे भी कम नहीं हरिदास ठाकुर जी, वो प्रहलाद महाराज ही हरिदास ठाकुर होकर के आए। उनका जीवन चरित्र देखो, उनका एक भी जब कुछ थोड़ा सा भी हम लोगों में आ जाने तो कहां भागेंगे, उनका विरोधी बन गया देश का राजा, वहां से मुसलमान शासक तो उसके विरोधी हो, जैसे ही मुसलमान होकर के अल्लाह खुदा नहीं कहता फिर ये करता है राम राम कृष्ण कृष्ण करता है,
मुसलमाना पत्ते करता
उसको 22 बजारे में कोड़े देकर के मारा, अधिकांश रूप में 2-4 कोड़ों में ही लोग मर जाते थे और 22 बजार में अनगिनत असंख्य कोड़े लगवाए और ये जीवित रहे, मांस और रक्त तो रहा नहीं, सब खत्म, बस यही तक खा लिया और नीचे का सब निकाल दिया। और उन्होंने कहा जैसे अरे प्रभु आप तो जिंदा भी हैं, आप नहीं मर जाएंगे तो हमको भी मारेगा, इसलिए आप मर जाएंगे तो हमारे परिवारों को तो उजाड़ देगा, हो रहा है अजय ठीक है बस समाधिस्त हो गए। इसके बाद जाकर के राजा को खबर दिया मुसलमान बादशाह को, उन्होंने कहा देखो नदी में जल प्रवाह मत करना,
खबर मत देना,
उसको खबर मत देना, यह नदी जो है ना कौन नदी,
गंगा
जी, कौन ये दोजक का रास्ता है, ये दोजक के रास्ते में ये ले जाने वाली है, इसी को
देने
पर थे और वो हरे कृष्ण करते हुए हाथ में माला लेते हुए जैसे के तैसे। अब उनको पता लगा नहीं ये तो जिंदा भी सच नहीं, अब फिर उनसे लोगों ने क्षमा मांगी, जब भजन करना है तो हरिदास ठाकुर जैसे विपत्तियां हैं तो भी भजन निष्फल। हम लोग सोचते हैं ना भाई महाराज लोग अभी तो अभी हैं तो एक इसलिए चल रहा है सब ठीक, इसके बाद में क्या स्थिति आएगी, कहां रहेंगे, क्या भजन करेंगे, कैसे रहेंगे, आराम के साथ में कैसे रहेंगे, इसलिए चिंता होती है। अभी तो कुछ नहीं करने पर भी भोजन मिल रहा है, बड़े आनंद के साथ में हम लोग चल रहे हैं और नहीं रहेंगे तो क्या होगा, इसलिए चिंता होती है भविष्य, भविष्य की चिंता मत करो, भविष्य की चिंता करने वाला कभी भी भजन नहीं करो, इसलिए अभी से भगवान का भजन करना आरंभ करो। इसलिए ऐसे महापुरुषों का चरित्र जब हम इच्छा होते हम भी वैसा ही, इसलिए ये गोपिया कहती है ये शिकंड में है और इनके कृष्ण के प्रति कैसी कैसा प्रणय है, हमारा भी काश ऐसा ही होता, ये सुनने का तात्पर्य हम कोई भी चीज सुनते हैं वैसा ही भजन करना चाहिए। नदस्तदा तदुपधारी मुकुंद आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा आवर्त
পঞ্চাকলপতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।
हम लोगों ने बताया था, फिर हम ठाकुर जी कह रहे हैं कि साधक भक्तों के लिए, गोपियों के लिए, गोपियों की जो दीना है उसमें पूर्व राज की दीना, वैसे ही जीवक को भगवान से मिलने जब तक उत्कंठा नहीं रहेगी तब तक भगवान से मिलन होने की संभावना है। इसीलिए पूर्व जी की उत्कंठा, प्रहलाद महाराज की उत्कंठा, चित्रकेतु महाराज जी की उत्कंठा, या जितने भी भक्त नारद जी की उत्कंठा, सब जगह उत्कंठा देखी जाए। ऐसे उत्कंठा से यदि साधन भजन हो तो हम लोग भगवान की कृपा पा सकते हैं। उधर में दूरप्रवास में भी यही, तो ये दोनों के लिए उपमा दे रहे हैं। गुप्त की माँ चरण कलम देश की तरफ है, धन्यास मूढ़ मतयो, अर्थात गोपियां महाप्रेमवती नित्य शिक्षा है। साधारण उत्तम भक्त भी उत्तम श्रेणी का भी भक्त रहेगा, तो उनमें अपने भावों को समस्त जीवों में देखते हैं। सर्वभूतेषु जा पश्यति भगवत भावम आत्मा, भूतेषु भगवत भागवत। उत्तम भागवत अपने ही भाव जैसा दूसरों में भावना कर, जैसा मैं मेरा भगवान के प्रति भावना मेरी है, ऐसे ही सब जगत में सब जीवों की देखी। यहाँ तक कि तरु लता गुण में भी वैसे ही, जैसे काम का पश्चिम की कामनी मैं जगह, कामुक व्यक्ति कामनी चोर अपने जैसा सबको चोर देते, छली व्यक्ति अपने जैसा ही छल दूसरों को देखता है। ये सबका स्वभाव अपने अपने जैसा सबको देखता। सबको अपने यहाँ पर आएगी उत्तम भागों का कारण ऐसा ही देखा जाता है। गंधर शक्ति है मध्यम के उत्तम, और जहां उत्तम में आया नीचे की तरफ उत्तम कनिष्ठ, तब वो सब बुद्धि
बुद्धि नहीं है। इसका क्या मतलब,
सब समय भगवान में आविष्ट है,
क्योंकि शरीर के रहते हुए तो शरीर में अभिमान
हो सकता है। जैसे कि नारद जी का पिछला उत्तम भागवत का चरित्र है, अथवा सुखदेव गोस्वामी का है, मूर्छित कसाय वाले का भी, ये लोग उत्तम भागवत है। और नारद जी भगवत दर्शन करने के बाद में जैसे ये तीनों मध्यम मतलब उत्तम अधिकार के लक्षण हैं, उसमें देहात अभिमान है। वो उसमें क्या देखता है, अपने भावों को दूसरों में देखता है, देखता है कि ये पेड़ में फूल खिले हुए हैं, क्या वो मैं जैसे कृष्ण को देख करके मेरी आत्मा प्रसन्न हो जाती, ये निश्चित ही इस पेड़ ने कृष्ण का दर्शन किया। नदी जा रही है वेग से, तो वो क्या देखेंगे, तो ये दौड़ करके जा रही है, कहां जा रही है, इसको कहीं से कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनाई दिया और कृष्ण वहां इसको किसी न किसी प्रकार से गंध लग गई है, इसलिए ये दौड़। कोई पक्षी रो रही है तो सोच रही है जैसे हम जैसे होते हैं, ये भी जरूर कृष्ण के लिए ही होते, सब जगह उनकी जैसे है। तो इसलिए कहते हैं सर्वभूतेश जपश्चेत भगवत भावम आत्मन, अपने हृदय में भगवान के प्रति जो सेवा की भावना या भावना होती है, विरह में मिलन में जैसी स्थिति होती है, ठीक दूसरों में भी वैसा ही। और दानी भगवत आत्मने सु भगवत्ता भगवत्तोत्तम, और समस्त प्राणियों में क्या देखते हैं, उनको देखते हैं भगवान में, भगवान उनको स्थित देखते हैं। आत्मन्वेषण पहला हुआ, अपने भावों को दूसरे के भाव में देखते हैं, अपना जैसा भाव भगवान में है वैसे उसका भी देखते हैं। और इसमें वो लोगों भूतानि भूतों में भगवत आत्मन्वेषु भागवतो, भगवान में सबको अवस्थित है, यही वो लोग उत्तम भाग। जैसे प्रहलाद महाराज, छोटे छोटे बच्चों में भी देखते हैं कि ये भगवान कैसे हो, और अपना जैसे उनमें भाव है भगवान के प्रति उन लोगों में भी देखते, ये उत्तम भागवत का लक्ष्य है। इसलिए गोपियां देख रही हैं, ओहो हमको कृष्ण में प्रेम नहीं, किंतु यहाँ के सुख पक्षियों में, मोर में, कोयल में जो प्रेम है हमारे अंदर, अच्छा वो क्यों कर रहे, उत्प्रेक्षा इसको कर, अपने भावों को उनमें आरोप करके अपने में नहीं देख रहे, वो अपने भावों को ही उनमें देख रही हैं, अपने अंदर में वो नहीं देख। जैसे मोर को देख रहे, जाओ मोर होना तो अच्छा था, हम यदि गोपी ना होकर के मोर होती तो अच्छा होता, कृष्ण को देख करके और उनके एकदम समीप चली जाती और कृष्ण बंसी बजाते हैं नृत्य करते, तो मोर को जो सौभाग्य है हमको अच्छे। अब यहां पर ये श्लोक है, वही कह रही है भक्ति विनोद ठाकुर जी यहां उद्धृत कर, नदस तदा पधारते मुकुंद अवत लक्षित मनोभव आलिंगन स्थगित पूर्व भुजे किरणंतिकार युगलम। इसके पहले उन्होंने देखा कि विमान से देवताओं की पत्नियां ऊपर से फूल की वर्षा कर रहे हैं, या देखा जब अपने पतियों की गोद में दुढ़क गए, कृष्ण का कितना सुंदर रूप और कितनी मधुर बंशी देख रहे हैं, हुआ कि नहीं, पेड़ पर सुख पक्षी वायल इत्यादि बैठे हैं चुपचाप देख रहे हैं, वो देख रहे हैं क्या कृष्ण की बंशी ध्वनि सुन करके ही मानो ऐसे स्तब्ध, और मोरों का नाचना देखकर के स्तब्ध, फिर देख रही है वो नदियां भी कृष्ण से इतना प्यार करती है। हिरणियों की बात छोड़ दो, मूढ़ है कॉफी देखो कितनी सौभाग्यवान, किंतु है तो चेतन, चेतन के लिए संभव, किंतु अचेतन हो, हम लोग चेतन होकर के भी हिरणी जैसे निर्लज्ज नहीं बन सकती, हिरणियां लोक लज्जा मान अपमान है सब कुछ छोड़ करके कृष्ण के पास में दौड़ी निकली गई, और उसका पति पीछे से उनके पीछे पीछे जैसे वो दौड़ रहे गोपी जा रही, वो तो स्वभाव से मधुर ध्वनि सुन करके उनका जाना स्वभाव है, वो तो गई चिंतन उन्होंने लगाया देखो हमसे भी इसका अधिक दे, अरे ये तो है जैसे भी है चेतन है, अचेतनों को भी ऐसा होता है जैसे नदत्त तदा कृष्ण के रूप और उनकी वंशी ध्वनि की माधुरी की ही विचित्रता इतनी है ऐसा, किंतु हम लोगों के लिए समझ। अच्छा, ये समस्त प्राणियों में जो देख रहे हैं, नदी में देख रहे हैं, पेड़ों में देख रहे हैं, पौधों में कृष्ण के प्रति प्रेम देख रहे हैं, यहां तक कि सुख पक्षी इत्यादि में देख रहे हैं, कोयल में देख रहे हैं और सब में देख रहे हैं, हिरणी में देख रहे हैं, आकाशचारी देवता। अच्छा, ये सचमुच में ये सब वहां पर सीनरी में ऐसा ही है न, ये देख रहे हैं, ये भाव भावना से देख। हो सकता है ऐसा हो भी, क्योंकि वृंदावन के लिए है, किंतु साधारण रूप में ऐसा नहीं देखा जाता। ये कृष्ण के प्रति, अब ये देखो, ये देखने की बात, ये कह रही है इसे मोरों में है, कोयलों में है, हिरणी में है और सब में है, किंतु अपने को कह रही ये हम में है, अपना शिकार है। अत्यंत गंभीर स्वभाव की है, भक्त लोग गंभीर होते हैं। कभी यदि कोई व्यक्त करता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, तो क्या समझो, भक्त का एकदम भक्त ही नहीं। यदि ये भावना मैं भक्त, जितना ही ऊंचा भक्त होगा वो कहेगा कि कृष्ण में हमारा प्रेम नहीं है, न प्रेम गंधोस्त तरह भी नहीं है, ये कहेगा। वो सब कहेंगे कि हमें प्रेम नहीं, भक्ति नहीं है। आज यदि इसने भक्त किया जब मैं भक्त हूं और दिखलाएगा, तो ये महाप्रतिष्ठा कामयाब है। इसलिए भक्त लोग ऐसा नहीं, प्रतिष्ठा से बच करते हैं, ये भक्तों की पहली निशानी है। इसलिए यहां कह रहे हैं ठीक है, इसलिए गोपियों के हृदय की ये भावना उठ रही है, किंतु इतनी गंभीर है, हम लज्जा के मारे, समाज के डर से, लोक लज्जा से, हम कृष्ण को देख रही है जो वहां आ रहे हैं, हम जा नहीं सकते, उनसे मिल नहीं सकते। और देखो तो इन सब प्राणियों को लोक लज्जा भय सब कुछ छोड़ करके, अच्छा तो ये कौन कर सकता है, जिसको अधिक प्रेम होगा वही ना, तो करीब हमने तो प्रेम होता तो ऐसा करते। इसलिए अपने भावों को गुप्त रख करके दूसरों को पढ़, इसी को कहते हैं अवहिता, रसशास्त्र में अवहिता कहा गया। किंतु गोपियां कैसी हैं, इनसे करोड़ों करोड़ों गुण उन्नत है, प्रेम में करीब है, ये सभी पूर्व राजवती हैं। और कृष्ण के से मिलने के लिए इनकी कितनी विफल आकांक्षा है, हम लोगों को कृष्ण से मिलने की इच्छा है कि नहीं, इच्छा तो किसी सबको थोड़ी थोड़ी रहती किंतु वैसी उत्कंठा जैसा होना चाहिए साधक में, किसी में हो भी सकता है, किंतु हम में नहीं, हमें माने कुछ में। अब किसके किसके अंदर में है वो सब जान सकते हैं, उत्कंठा थी इसलिए तो घर बार छोड़ करके सब आप लोग आए, ये भी सुनने के लिए प्रवचन इत्यादि सब आए, है कुछ, एकदम नहीं ऐसा नहीं है, कुछ जरूर पूर्व जन्म का सुकृति करो जैसा साधन है सब, किंतु जितनी उत्कंठा हम लोगों में होनी चाहिए कुछ गड़बड़ी, ये भी है देहात अभिमान के, या भक्तों के संग न होने के कारण, या भक्तों का संग होने पर भी जितना हमको उससे लेना चाहिए इसलिए भी हो सकता है, उतना साधन भजन हम नहीं करते हैं इसलिए, तो इसलिए ये कह रहे हैं। वो हम लोग को तो अभी तक लज्जा है, अभी हमको लोक लज्जा है, और हमको भी धैर्य है लोकापेक्षा वाला धैर्य, इसलिए नहीं जा रहा। अब यहीं पर मान लेके खूब सुंदर एक सजी हुई बरात आए ना, और वहां से सुंदर बाजा बाजा जा रहा, बिजली का लगा डेकोरेशन सब जा रहा है। तो माने कि यहाँ पर ना रहूं मैं, क्या होगा?
दौड़ के जाएंगे देखने,
सब लोग देखेंगे। अच्छा मैं रहूंगा तो मेरे डर से हो सकता है कि महाराज जी तो जान नहीं रहे हो क्या कहेंगे। इधर लोक लज्जा से भी कुछ ऐसे आदमी है जो हृदय से कहे नहीं, इच्छा करिए जाए जाए कि तो इसको कहते हैं धैर्य। धैर्य लोक लज्जा पति प्रता का है, तो ये सब के कारण हम नहीं जा सकते। किंतु ये लोग हमसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि कृष्ण का यह दर्शन करते हैं, इनका जन्म लेना था। कितनी इनकी उत्कंठा है किंतु अपने को नहीं कह रहे, अपने को ये छिपा रहे। अब वो जो छिपा रहे,
प्रश्न आता है यहाँ पर, गोपियों का जो दर्शन है ये वास्तव है या काल्पनिक?
किसको ये संदेह हो रहा है? प्रश्न किसको हो रहा है?
नहीं ये
तो ये प्रश्न किसको हो रहा है?
क्योंकि गोपियों का जो यथार्थ है, यथार्थ वस्तु को यथाजथ रूप में देते हैं,
उसी को होगा जिसको संदेह होगा। संदेह हो सकता है, दोनों हो सकता है। वृंदावन के स्थाव जंगम सब नित्य सिद्ध है, तो उनमें तो कोई संदेह की बात नहीं है, इसलिए गोपियां यथार्थ देख रहे हैं। और जो उस स्तर के साधक नहीं है वो लोग कल्पना करेंगे जो उनमें तो नहीं है, किंतु गोपियां अपने भाव को उनमें देख रहे हैं। साधक के तापन में से वृंदावन में तो कोई जड़ चीज है नहीं, और सभी सिद्ध हैं, वृक्ष भी है तो सिद्ध है, लताएं हैं, गुल्म है, पशु हैं, पक्षी हैं, सर्वानंद मुकुंद दैतम लीला अनुकूलम पर शास्त्र मोह मोह निशंकम। मैं सबकी वंदना करता हूं क्योंकि वो सबसे सिद्धानंद है, इसलिए उन्हें भाव जरूर होगा तभी गोपियां देख रहे। और दूसरी बात साधारण साधनों के लिए नहीं होने पर, एक आदमी चोर नहीं है किंतु हम देखते हैं कि ये चोर है, किसी का पॉकेट से कुछ रुपया निकल गया,
ये तो कल्पना जगत का ही कल्पना मात्र।
हाँ तो प्रसिद्ध जो साधक के ऊपर में शब्द है, क्या साधक किस स्थिति में है? अब देखो यहाँ पर नदियां किसको कह रहे हैं? वृंदावन में नदियां
यमुना जी,
मानस गंगा है, ये सब नदियां और भी इसी तरह की नदियां हैं। असल में वो प्रेम को ढकना चाहती थी किंतु ढक नहीं सकती, अपने भावों को ही वो करने लगती, अपना अंदर में कृष्ण के प्रति जो भावना थी। उच्चेतन अचेतन कौन सुन रहा है नहीं रहा है, ये सबका विचार है, जो अपना भाव था ऐसा में स्पर्श कर रहे। अभी तक तो गोपन रख रहे थे किंतु अब गुप्त नहीं, अपने भाव को खोल करके सबके सामने ये करने लगी, शक्तियों से ही कर रहे। कुछ भी ये करें न सदा उधार मुकुंद, देख रहे हैं कृष्ण बंसी वादन करते हुए जा रहे, यमुना के पुल में पहुंचे, यमुना के कुछ ऊंची भूमि है, पेड़ के सहारे खड़े होकर के बंसी वादन कर, सब पशु पक्षी सुनकर के स्तंभित हो रहे हैं। और उन्होंने भाव नेत्र से गोपियों ने देखा, नदी तो जा रही थी अपने पति के पास, सरित पति है ना, समुद्र में मिलने के लिए बड़ी तीव्र गति से, क्षिप्र गति से जा रहे हैं। और इतने में यहां से उपकुल में खड़े कृष्ण की वंशित ध्वनि उनके कानों में सुनाई और समान लावण्य की राशि ऐसा वो कभी नहीं प्रकट हुआ कभी एकत्रित होकर। अब उस नावत जो नीचे जा रही थी भगी भगी अपने पति से मिलने के लिए, समय नष्ट न हो दौड़ी दौड़ी जा रही थी वेग से, तो उनका वेग सुनते ही बस झट मुड़ गया और कृष्ण की तरफ में आने लगा नीचे से, और ऊपर वाली जो धारा आ रही थी ऊपर से नीचे की उस वेग से आ रही थी, वो वेग भी और चौगुनी हो गई जल्दी से आने के। अब उधर से आ रही इधर से ये आ रही, दोनों में मिलन हुआ ना तो वो घूमने, इसी को कहते हैं काम भमर इसी को कहते हैं जब धारा रुद्ध होकर के किसी चीज से रुक करके और इधर में मानती नहीं है वो भी जा रही है और उधर से वो भी खेत फेंक रही जा रही है, तो घूम करके वहीं पर इसको ये गोपियों ने देखा ये भ्रमर हो रहा है। माने क्या, ये यमुना जी का बस स्थल है, कृष्ण ने देख करके देखा ये श्यामा बड़ी सुंदरी गोपी है, यमुना श्यामा है देखकर बड़ी प्रेमवती है, बस बंसी वादन किया और वो ये घूमना जो भ्रमर है भ्रमर नहीं है, ये क्या है मानो करके प्रणाम करता है, तो प्रणाम करने से क्या हुआ उसकी गति जो आगे जा रहा था वो लौट करके चला करके वहां पर खड़ा हो गया, इसीलिए भगने गति उनकी गति देखो ये गति का टोना टोना ये इसको मत समझो, मुकुंद भी अलग अलग लक्ष्य मनोभाव सब में देखा मनोभाव कहते हैं प्रेम को, ऊंचे प्रेम को साधारण जगत में कहते हैं काम को, काम एक मन का अधिकार है जो अपने भोगों से उत्पन्न होता है, दूसरों के प्रति उसमें हिताकांक्षा नहीं हो, जिसको कहते हैं साधारण रूप में अंग्रेजी में लॉस, ये किसी भी साधक के लिए ये बहुत ही हानिकारक जीवन को सफलता काम जाति का किसी को कहते हैं मनोभव, मन में गति को एकदम कैसा कर देता है उसमें मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता, उसमें कितना जैसा आदमी हो जाता है कोई भी ज्ञान नहीं। अरे और की तो क्या भगवान मोहिनी रूप धारण किया तो शंकर जी की क्या स्थिति हो गई, पहले माने नहीं तो उनको कहा जाए सहायता मत कीजिए हमारा दर्शन मत मांगिए मोहिनी का, तो नहीं माने तो दिखला दिया, तो और लोगों की क्या होगी, तो ये साधकों के लिए बहुत ही खराब चीज है। किंतु प्रेम का भी लक्षण वही है, ऊपर से दिखने में तो दोनों एक समान लगता है किंतु एक है शुद्ध प्रेम जिसमें अपना कुछ नहीं देखता है केवल सब समय भगवान की प्रति को, इसलिए वो प्रेम आत्म इंद्रिय प्रति इच्छा भरे कामना और कृष्ण प्रति भरे प्रेम, कृष्ण को प्रेम प्रसन्न करने के लिए जो होता है उसको कहते हैं प्रेम, और अपने लिए होता है काम सब समय अपना अपने भोग की कामना में काम, और जहां पर यह शुद्ध हो गया है एकमात्र कृष्ण का ही की सेवा के लिए वो होता है, तब होता है इस रूप में।
तब तो इसको मानी जाए कि वासना कभी समाप्त नहीं
है, वासना बदलती है कृष्ण की विषय से तृतीय हाथी जय हमारा
नहीं मदद,
किंतु देखो कभी ये मन की गति है वो शुद्ध होगी किंतु अंत में छोड़ना पड़ेगा, विषय छड़िया कदे सिद्ध होवे नॉन, किंतु उस मन से एक दिन छुट्टी पाना है। मन शुद्ध होने पर भी किसी समय गिराने की चेष्टा करेगा।
नहीं, ये शरीर के साथ साथ मन का भी तो समाप्त,
इसीलिए तो कहते हैं शरीर के साथ में समाप्त नहीं होगा,
यानी जब की मुक्त होकर के चले जा रहे हैं
तब तब तक कुछ शुद्ध हो सकता है, किंतु सब समय वो गिराने की चेष्टा में रहेगा, क्योंकि वो जड़ों से बना हुआ है, जड़ चीजों से ये मन बनता है, इसलिए वो वैसा है। शुद्ध होने पर भी उसमें जड़ीय भावों की भावना रहेगी, इसलिए वैष्णव लोग या संत लोग या साधक लोग ये लिंग शरीर को भी छोड़ देने के लिए, जैसे नारायण जी का हुआ,
इच्छा जो है वो तो आत्मस्वरूप नहीं है,
होने पर भी आत्मा का शरीर मन अलग है, मन का अलग है, शरीर का अलग। इसलिए नारद जी का पंथ भौतिक शरीर शुद्ध होता, सुनो, नारद जी का पंच भौतिक शरीर तो दूर हो गया था, पंच भौतिक शरीर उनका जब नष्ट हो गया है तो आत्मगत शरीर, आत्मगत मन, आत्मगत इंद्रियां सब उनकी प्रगत, अब उसके द्वारा प्रेम ये संभव हुआ, किंतु जब तक ये स्थिति नहीं आएगी तब तक मन शुद्ध होने पर भी कभी भी वो उसके पतित होने की संभावना बनती
है। वो तो ठीक है, मेरा कहना क्या है कि आत्मा के अंदर में इच्छा है तब तक इस शरीर में प्रतिफलन हो रहा है इसका
नहीं,
इच्छा के शरीर में तो स्वतंत्र इच्छा नहीं,
तो ये करताल में क्या नहीं होता, हम जो कपड़ा पहने हैं उसे भी तो शरीर का संबंध है, उसमें क्यों नहीं होता, इसमें प्रतिफलन की शक्ति नहीं है, मन में प्रतिफलन होने की
शक्ति है, किंतु मन की तो इच्छा नहीं है,
मन की इच्छा नहीं है, किंतु मन में प्रतिफलित होने की, जैसे ऐना में रूप झलकने की शक्ति है, काट में, मिट्टी में और दूसरे चीजों में वैसा नहीं, ऐसे मन में भी कुछ सुकून और आत्मा की तो वही है इच्छा, तो उसमें प्रतिफलित हो रहे, सब इच्छा अंतर हो जाएगा इसलिए अपने यहां पर कह रहे हैं मनोभाव भग्न बेगा, गोपियां अपने मन के भाव को, उनका मन तो सिद्ध है कृष्ण की प्रेम के लिए है, किंतु कह रही है ओहो ये तो ये जो घमरे दिख रही हैं और सब जो चीजें दिख रही हैं ये सचमुच में इसका मनोभव प्रकाश हो रहा है, क्या मनोभव प्रकाश हो रहा है, कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम इनका प्रकाश, कैसे प्रकाश, आलिंगन स्थगित पूर्व भुजई दुरारे दृढ़ंति पाद युगलम कमल उपहार, ये तो कमल का उपहार देकर अपनी लंबी लंबी भुजाओं से ऊपर में बैठे हुए कृष्ण के पास में उनके चरण में उपहार दे, कैसे दे रही हैं, पानी बढ़ गया वो भ्रमर से और धारा रुक गई, बढ़ गया, अब वो कृष्ण जहां पड़े थे वहां पर उनको यहां तक भिजा दिया पूरा, माने क्या आलिंगन किया, किंतु कृष्ण निर्विकार खड़े रहे, तो उस समय वो कुछ लज्जित भी होकर के उनके चरण में
पानी कम हो गया
चरण में गिर पड़े, और पानी को उन्होंने क्या किया, अब उनको चरण चलिए आप पसंद कर गोपियों की कितनी सुंदर, तो कहते हैं आलिंगन स्थगित छोड़ दिया, स्थगित माने आलिंगन करना स्थगित कर दिया, जरूरत नहीं, लज्जित हो गई, जो बच्चे चरणों की पूजा करने गठन दिपाद जुगलम कमल उपहार, कमल का उपहार वो किया, चिंता देखो एक विचार, ये हरिदास ठाकुर जी बेनापुर में भजन कर रहा है। नदिया के पास में, शांतिपुर के पास में देना हो, वहां पर किसी राजा ने रामचंद्र उसमें इनके प्रति ईर्ष्या होकर ये साधारण पब्लिक हमको नहीं मांगती, और भाई दास ठाकरे एक मुसलमान, जाति कुल शील आचार से कुछ भी नहीं, और इनको इतना सम्मान देते हैं क्यों? अब वो उनको पतित करने के लिए, लोगों की दृष्टि में गिराने के लिए उसके पास में वेश्या बड़ी सुंदर वेश्या। उसका काम क्या है? बेसो परजीवी को कहते हैं वेश्या,
विषय भगवा वेश्या,
विषय भगवा वेश्या। क्या है श्रृंगार?
बाहर का साज,
बाहर के श्रृंगार से अपने को सजा कर लोगों को धोखा देना, जिसका नाम है। इसलिए समाज में हमारे हिंदू शास्त्रों में सर्वत्र ही इसको घृणित बतलाया, कृष्ण ने स्वयं बतलाया, इसी रामलीला के प्रसंग में बतलाया है, अस्वर्ग अजस्त करम अजस्त कर, मैंने क्या लोगों में बड़ी निंदा होगी ऐसे कर्म। ताओ अपने पतियों के पास में रात का समय, भोर रात्रि, भोर जंतु द्वारा सेवित, बड़ी भयानक रात्रि, ये स्त्रियों के लिए पतियों की सेवा करना ही, यदि औरत निर्धन हो, रोगी हो, या जैसा भी हो उसकी सेवा, क्योंकि यह शास्त्रों में कहा गया है ऐसा होना, वेश के द्वारा जीवित रहना, श्रृंगार के द्वारा दूसरों को ठगना, यही कुछ श्रीमद भागवत में कहा है प्रसंग ना, वो वेश बना करके प्रतीक्षा कर रही है, किसकी प्रतीक्षा कर रही है श्रृंगार? लोग आएंगे उनको कैसे लूटने, कैसे लूटने, यही बन और रात भर जगती रही। अंत में करते करते एक दिन पड़ा, उसको खेद हुआ, जैसे ये सोचो बड़ी घृणित थी, बस सबको छोड़ करके निश्चिंत होकर के भगवान का स्मरण करने लगे। भगवान का स्मरण करते ही चित्त में शांति या उत्सव हो गई, नेतनी भी नहीं जाती। ऐसे और भी संग में प्रसंग में सफर यहां पर
भागवत में प्राचीन काल में भी ऐसे बार वनिताओं का उल्लेख
है, ऐसी जैसा था ये आज जब से सृष्टि है तब से है।
जैसे कृष्ण के सामने
तो जीवों को मोह कैसे होगा, जीव मोह कैसे है? इसलिए प्रारंभ काल से सृष्टि के प्रारंभ है अनादि काल प्रश्न उत्तर और सृष्टि से जीवों को मुक्त करने उन्होंने इच्छा की, तो जीवों को कैसे दंड देंगे? ये कारागार रच दिया, कृष्ण रूप रस शब्द गंध स्पर्श ये सब कर दिया, मरो तुम। साधारण जीव ये समझता नहीं, इसलिए उनको जेल खाने में सड़ाने के लिए, गलाने के लिए, दंड देने के लिए ये सुन लोहे की शिकल से नहीं काम होगा, यह आसक्ति की बड़ी मजबूत जंजीर लगा, इसी के रूप रस का गंध स्पर्श से भरा जी सकता। तो हम देखते हैं तीन दिन उसने सुना, हरिदास ठाकुर जी से नाम सुना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अच्छा वो तो सब प्रकार के भोगों से समृद्ध थी, बहुत सुंदर है ना, और भाई ऐश्वर्य में थी, साधारण नहीं थी, राजाओं से उनके संपर्क, उनको चलिए क्या सुंदर रूप और धनी मानी यदि उनको मिल जाए ना तो उनका व्यवसाय अच्छा चल रहा है। यदि किसी को संसार में सबसे धनी और सबसे सुंदर यदि कृष्ण मिल जाए, कृष्ण से कोई सुंदर है, कोई उनसे धनी है, ऐश्वर्य और वैभव संपूर्ण उनके चरणों में हो। ऐसे कृष्ण से यदि किसी का निधन हो जाए, जीवन के प्राप्त हो जाए और बेशा नाम भी कट जाए। हरिदास ठाकुर जी क्या करते हैं, वो सुनाते हैं। अच्छा, उसको हो गया वैराग्य, हो गया ना, बस अति साथ हरिदास ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली जी आप तो हमारा उद्धार। अरे उद्धार किस लिए, तुमको तो और वैभव की जरूरत है ना, आई थी किस लिए, वैभव के लिए ना, राजा उसको क्या दे देगा, तुम जो कुछ मांगेगी सब हम दे, तो उसको तो वैभव के लिए आई और उसको सुंदर से सुंदर के लिए राजा का रूप निर्णय हुआ है, उसको बराज्य क्यों हो गया, क्यों बरा। और उसको कहते हैं जैसे हरदास ठाकुर ने उसका उद्धार कर दिया, क्या उद्धार किया, उसका उद्धार ये किया जो वैभव में थी, बड़े सुख से पल रही थी, बड़े बड़े लोग उसके पास में आ रहे थे, उनके चरणों को चूम रहे थे, चरणों में नतमस्तक हो रहे थे, वो आज सब कुछ छोड़ करके दरिद्र बन करके एक कपड़े मोटे कपड़े पहन करके और वहां पर खाने के लिए कुछ नहीं व्यवस्था, वो दरिद्र की अवस्था में और कृष्ण कृष्ण कहने, तो इसका क्या उद्धार हुआ। जगत के ऐसे लोग हैं जो ऐसी स्थिति को चाहते हैं, जो इतना बड़ा भारी ऐश्वर्य धन संपत्ति से संपन्न हो सके, आज सब समय सुंदर रूप है, यौवन है, सब कुछ है, धन है, प्रतिष्ठा है, उस स्थिति को छोड़ करके भीख मांगने के लिए मोटे कपड़े मैले पर चेहरे को पड़े पहनकर और दिन रात हरि नाम कर रहे हैं, इसका क्या उद्धार हुआ। आजकल के लोगों की दृष्टि हुआ उद्धार न कि और ग्यारह सातल में क्या हुआ, हम लोगों की दृष्टि से साधारण जो विषय है उनकी दृष्टि में तो वो धीरे, इसका बड़ा भारी दुर्भाग्य है। सब वैभव छोड़ करके वो पगली हो गई ना, क्या यथार्थ में वो पगली ही कहेंगे पगली, किंतु इसको ऐसा हुआ क्यों, इस पर विचार कभी किया, क्यों हुआ। ना हुआ हरिदास ठाकुर ने उसका उद्धार तो कर दिया, किंतु क्यों ऐसा हुआ, उस दिन तना कर दिया कि भाई ये बात ठीक नहीं, बात ठीक नहीं है, तुम ऐसा मत करो, किंतु वो उसको स्वभाव से ही वैराग्य हो गया, ऐसा छोड़ दिया, उसको कोई इससे कोई अच्छी चीज मिली होगी तब तो परम दृष्टवान वर्त थे गीता में कहते हैं। अच्छा, वो जो नाम करती है हरिदास ठाकुर जब नाम करते हैं तो उनके हृदय में भावना क्या होती है, क्या भावना होती है, क्या वो देखती है, देखता है हरिदास ठाकुर जी क्या देखते हैं, संसार में सबसे जो सुंदर है कृष्ण का नाम देखते हैं कि नहीं, नाम नाम ही अभिन्न है। अच्छा, तो वो देखते हैं संसार में ऐसा कोई रूप है, जो रूप को उसको देख लिया फिर वो संसार का कोई रूप देखेगा न कि बेस पर जाएगा, नहीं जाएगा। अच्छा देखो, कृष्ण बंसी बजाए, गोपियां चल रही, गोपियां श्रृंगार कर रही थी छोड़ दिया, कपड़े तो अच्छी तरह से पहनना चाहिए, वो कपड़ा भी रह गया, वो यहां से गिर गया नीचे और वो दौड़ पड़ी, तो कपड़ा हुआ फैसला हुआ चला जा रहा। अच्छा, आंख में अंजन करना चाह, अभी आंख में अंजन किया, एक आंख में चल पड़ी, ये कोई रूप है, श्रृंगार है, कोई श्रृंगार है ना, क्या है यहां का गहना, यहां पर पहन लिया नहीं तो वो भी नहीं पहना, कोई गाना ही नहीं पहन सकते, भूल गई सब श्रृंगार करना। अच्छा, वो कृष्ण की, अच्छा ये श्रृंगार ठीक है ना, वो श्रृंगार ठीक है, वो जो भाव रूपी श्रृंगार है, नौविध नौ नवरस
वरस भाव विकार,
वो क्या है, भूषण भूषण नवरस भाव अधिकार, ये जो भाव है ना, ये भूषण है जीवों के और ये सौंदर्य है, ये उनका श्रृंगार है ना। अच्छा, वो जो पहले जो वेश्या आई और उसने जो श्रृंगार सुंदर करके हरिदास ठाकुर के सामने आए। और फिर इसके बाद में जब तीन रात्रि के बाद में जब उसको इस साधारण वेश में देखा और जब हरिनाम करते हैं तो आंखों से आंसू आ रहे हैं, प्रेम के आंसू छलक रहे हैं, शरीर का होश नहीं, कपड़े का होश नहीं, दोनों रूप में कौन सा सुंदर है?
आप ये कहो
क्यों सुंदर है? वो जो चीज को अंतर ही मन में, मन के द्वारा जो, आत्मा के द्वारा जो देख रहे हैं या हरिदास ठाकुर देख रहे हैं और जो वो दिखने में भी, उसके लिए कहते हैं सही से वैष्णा वैश्या परम महान परम महान थी मैंने परम महंत महंत उत्तम भागवत को कहते हैं परम महंति माने उत्तम वैष्णव। उत्तम वैष्णव का यही लक्षण है, इसलिए उसकी ऐसी दशा हुई। वो कितना सुंदर श्रृंगार करके कृष्ण के सामने में वो कीर्तन कर रही होगी, गोपनों के साथ में करेगी, इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए बड़ा गया ऐसा ही नहीं हो गया, हरिदास ठाकुर की ये कृपा थी उसके ऊपर में, इस प्रकार का उसका दर्शन बना दिया। और वैसे भाव नहीं, तो ये गोपियां साधारण रूप में दिख रही हैं ऐसी, किंतु कैसी स्वभाव की है? यदि हरिदास ठाकुर के संपर्क से इतना संसार में सुखी आदमी जी भी रूपवान होकर के रूपवती गुणवती सौंदर्यवती और ऐश्वर्यती होकर के भी उसको तुच्छ एक घृणा के समान उसको दूर कर दिया और वैरागिनी बन गई। कैसी? मोटे कपड़े, एक कपड़ा और कोई दूसरा कपड़ा नहीं, तुलसी में जल दे रही, उसकी परिक्रमा कर रही, कोई ला रहा है खाने के लिए भोजन, उसके तरफ तो उसकी दृष्टि नहीं है, क्या देख रही है? तन्मय भाव से वो भाव लाने के बिंदा जी से प्रार्थना कर, गंगा जी पास में उससे प्रार्थना कर। अब देखो अब स्थिति क्या हुई, उसमें वेश्या का के पास में कैसे लोग जाते थे? पहले जितने बदमाश फटीचर धूर्त कामी संसार में जितने भी दोष हैं वैसे लोग जाते थे ना, अब इसके पास में कैसे लोग आने लगे? अब देखो तो बड़ो बड़ो
कुछ नहीं,
बड़ो बड़ो माने उत्तम उत्तम, ये सब वैष्णव लोग उनके पास में जाते किस लिए? जाकर के
प्रणाम,
वो देखती है कि नहीं देखती है, वो अपने भाव में मग्न होकर के 4 लाख या 3 लाख हरिनाम उसको अपने गुरु से बतलाए उसको कर रही है और वो देख रही है, न उसको खाने की चिंता न पहनने की चिंता न। यदि साधक अवस्था में ऐसा हो सकता है, आप गोपियों की चिंता कर नहीं कर सकते, इसलिए इसी को कहते हैं उद्धार। उद्धार माने क्या है? वो जो भोगों में जो अपना सुख जो देखती थी उसको उन्होंने बदल क्या दिया, एकदम लोगों की बहन करके या जैसा साधारण रूप जीवन का निर्वाह करके भगवान का भजन करना, किसको तो उद्धार कर, किंतु वो कैसी स्थिति में
कृष्णार्थे अखिल भोग,
इसलिए कहते हैं कृष्णार्थे अखिल भोग त्याग,
अखिल
कृष्ण के लिए समस्त भोगों का त्याग और अखिल सब चेष्टाएं कृष्ण के लिए हो। गोपियां ऐसे दोनों चीजों में हैं, इसलिए इनके भाव ऐसे हैं और ऐसे भाव साधारण लोगों में भी ये देखते हैं, इसलिए गोपियां साधारण नहीं है। आलिंगन गोपियों का भाव अपने आप प्रकट हो गया, क्या प्रकट हो? इनके भाव क्या है कृष्ण के प्रति, ये भाव अब यही थोड़ा प्रकट हुआ ना, अब बड़ी लज्जा है, ओह ये तो हमको प्रकट नहीं करना चाहिए, ये प्रकट हो गई। साथ ही साथ उन्होंने खूब पलट दिया, हंताय मद्रय बला हरिदास राम कृष्ण चरण प्रमोद मान प्रमोद पानी सूर्य सतमूल एकदम बदल दिया। हंता ओ गिरिराज गोवर्धन आपकी जय हो, जय हो, आप हरिदासों में, इसलिए अपने भाव को छिपाने के लिए इसलिए भगवत भक्त जब भजन करते हैं भगवान के, और कभी कभी लोगों में प्रकाशित हो जाता है, आंसू देखते हैं ना, जब आंसू आ जाए शरीर में रोमांच कंप इत्यादि आ जाए, तो उसको क्या करते हैं?
अष्ट शक्ति भाव की कुछ लक्षण
भाई, आंख में कुछ पड़ गया।
अच्छा,
आंख में कुछ चीज पड़ गया, क्यों भाव को छिपाना है? साधारण आदमी कहेंगे ठीक ही कह रहे हैं, पर आंख में कुछ पड़ गया, और जो भाव भक्त होंगे वो समझ लेंगे, वो देख लेंगे, उनकी नजर से ये बच नहीं सकते। इसे इनके भाव के समकक्ष जो रहने वाले जो हैं सुखदेव गोस्वामी को ये नहीं खुला, और लोगों को ये नहीं खुला, इसलिए पीछे से अभंताय हम अभ्रबला, या इस श्लोक में जो कुछ छूट गया है कुछ हम कल इसकी चर्चा करें। कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते द्वैपायनो निरन्तरकर्यायुहा पुत्रे तन्मयतया करो सर्वभूतविदयम्। भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा संग्रहित भजन रहस्य के सप्तम ज्ञान के अनुकूल श्रीमद्भागवत के श्लोकों को हम लोग अनुशीलन कर रहे थे, जिसमें पूर्वराग साधकों के लिए कौन साधक राधानुगा वैष्णव जो भावावस्था में पहुंचे उनके लिए साधन के लिए उपयोगी है, पूर्वराग के लिए कुछ श्लोकों को यहाँ पर दे जिसमें बतलाया नव दस्त तथा पदारी जो मुकुंदगी आवत्त लक्ष्य मनोभव अपने देगा आलिंगन स्थित उर्म भुजई दूरारे गिरणंतिकादिजुगलम। यहाँ तक हम लोग इसमें आवत्त लक्षित मनोभव भवन देगा और आलिंगन स्थित उर्मी भुजई दूरारे, इसके संक्षेप में हमने कुछ व्याख्या की सुना चतुर्थी चाकू जी के विकास। गोपी यमुना नदी मैंने चेतन लोगों की तो बात किया, अचेतन लोग भी वंशी तो ध्वनि कृष्ण की वंशी ध्वनि को सुन करके ऐसे मोहित हो जाते हैं, स्थावर जंगम हो जाता है, जंगम स्थावर बन जाता है। अब यमुना नदी स्थावर होने पर भी किस तरह से उनके अंदर में मनोभाव होता है, विकार होता है, और किस प्रकार से वो नीचे जाना छोड़ करके ऊपर की तरफ आने लगती है और उसमें भ्रमर आ जाते हैं। ये भ्रमर नहीं है बल्कि उनका मनोभाव है, जो भग्न हो जाने पर स्थगित हो गया तक उनकी थारा रुक गई, आगे चलने से रुक गई और वो ऊपर में चल गया और वो पानी बढ़ने लग गया और वो कृष्ण को हस्ताक्षर तक आलिंगन करने के बाद कृष्ण ने माने चुपचाप हुए, कृष्ण खड़े रहे, इसके बाद बड़ी लज्जित होकर के अंत में कमल उपहार लेकर उनके चरणों में अपने बस्तर से उनके चरणों को या हाथों को। ये गोपियां अपने अनुरागमय भाव को दिखाकर देख रहे हैं कि ये यमुना में भी है, अब है कि नहीं दो दृष्टियां हैं, यदि स्थावर मान लेते तो नहीं और चिन्मय मान ले यमुना जी को, विशाखा जी मान लेंगे जमुना में है इसलिए वहां के स्थाव जंगम साधारण सभी सच्चिदानंदमय है, इसलिए वहां पर सबने गोपियां देख रही हैं और साक्षात में ऐसा भाव। चैतन्य महाप्रभु जी भावावेश में पूरी जगन्नाथपुरी में कूद गए। क्यों कूद गए? उन्होंने देखा जाइए नीला पानी ये जमुना जी, तो महाप्रभु का यह भ्रम था या सचमुच में कूदे न, क्या बात? समुद्र तो जमुना नहीं था, उसमें कूद गए भावावेश। तो यहां कुछ साम्य भाव वाले स्थानों में उनका ऐसे हो जाता है, ऐसा है। अतः जब उनके भावों के अनुरूप वृंदावन, जैसे वन को देखा तो वृंदावन देखा और नदी देखा तो उसको कालिंदी मानकर, तो उसमें कालिंदी तो थी नहीं, किंतु चैतन्य महाप्रभु तो सत्य संकल्प है, तो वो कहां कूदे होंगे? उस सचमुच में जमुना में कूद गए और वहीं पर कृष्ण और गोपियां सभी वहीं पर मिल गई भूमि जब, और उसी में आनंद से अपना विहार कर रहे थे। और कुछ देर के बाद में क्षण मात्र नहीं हुए तब तक घोष आया, तो देखा जो सभी भक्त लोग उनको घेर करके क्या कर रहे हैं, वो एकदम संधियां उनकी सब एकत्र हो गई और कच्छप जैसे हो गए, गोलपिंड केवल रह गए, एक मछुआरे के जाल में आ गए, समुद्र में वैसे लुढ़क रहे और उनको मछुआरे उनको मछली मारने जैसे उनको निकाला। वो सोचा ये बड़ी लंबी चौड़ी मछली कोई फंसी, जब निकाला तो दिखा रहे ये क्या, वो डर गया और गोगो गोगो सब तो उसमें से हो रहा है, ये तो भूत आ गया जाल में, बस उसको भूत पकड़ लिया और जाल को बाहर रख करके और वहीं से भागा। भाग करके वो आ रहा था जगन्नाथपुरी की तरफ, चक्रवेड़ की ये घटना है, दो तीन मील सुशेतम क्षेत्र वहां से पुरी से, वहां से पंकी मुहाना भी कहते हैं, वहां से थोड़ा सा ऐसे घूम गया है, तो वहीं पर भागा। जबकि वो तो रास्ते से भक्त लोग आ रहे थे महाप्रभु को समुद्र के किनारे खोजते खोजते, यदि समुद्र में कूदे हुए सब जगह देख लिया कहीं नहीं भी, अंत में खोजते 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 समुद्र के किनारे किनारे आने लगे। देखा जे एक आदमी फटका हुआ भागा हुआ आ रहा है भूत भूत कर, अरे क्या हुआ? तो भूत हमको पकड़ लिया, भूत पकड़ लिया, थक जाओ थक जाओ मैं उठा हूँ तुम्हारा भूत उतार देता हूँ। सर दामोदर ने उसे पकड़ लिया और एक थप्पड़ डाल मारा और ऐसे कुछ मंत्र जैसा पढ़ दिया, ये तो सचमुच में भूत उतर गया। अब तुम कहां से आ रहे हो? तुम वहां से आ रहे, क्यों तुम्हारी दशा क्यों हुई? हमको भूत पकड़ दिया, वहीं पर एक भूत हमारे जाल में पड़ गया। तो कैसा वो भूत था? तो उसकी कोई हाड़ काड़ कुछ नहीं था, वो गोल पिंड जैसे कछुए जैसा अच्छा ठीक है, तो चलो तो मैं दूर नहीं निकट में नहीं जाऊंगा, तो ठीक है तुम दूर से दिखा दें। तो बस उसको देखकर के चले और वहां जाकर के देखा, अरे वही महाप्रभु जी, और सब तो चला गया और ये सब देखा जी। अब इनको कैसे होश में लाया जाए? सब वो कीर्तन करने लगे चारों तरफ से और कीर्तन की ध्वनि सुनते सुनते कुछ देर में महाप्रभु इनकार करते हुए, कभी हमको वृंदावन में था, राशस्थली में था, कृष्ण हमारे साथ में थे, गोपियां हमारे साथ में, हमको वहां से क्यों उठा दिया? बड़े दुखी हो गए। तो यह उनका भ्रम था कि वृंदावन में है, न कि स्फूर्ति थी न क्या था। जो जैसा आदमी होगा उसके अधिकार के अनुरूप में वैसा ही, सबका अधिकार एक समान नहीं, कोई इसको स्फूर्ति मान सकते हैं तो ठीक है उनके लिए स्फूर्ति, और कोई साक्षात रूप में देख रहे हैं तो उनके लिए वैसा ही, और कोई भ्रम मानेंगे तो उनके लिए वो अपने अपने अधिकार, किंतु बातें सभी ठीक है, अधिकार के अनुरूप में ये सब चीजें लगती हैं। तो यहाँ पर इसलिए बतला रहा है, हाँ तो नदियों में जो देख रहे हैं गोपियां देख रही हैं नदियों में, तो नदियों में भी यदि विशाखा इत्यादि नित्य सखियों को मान लिया जाए तो ठीक है, नहीं तो उसमें स्फूर्ति भी ठीक है, अपने अपने अधिकार के रूप में जो जैसा भक्त होगा वैसा। अब ये बतलाया वो गोपियां लज्जित हुई और गोपियां ने जमुना जी लज्जित होकर, और फिर उनका काम का ज्वर उतर गया, और उतरने पर लज्जित होकर के उनके चरण में कमल का उपहार दे करके चरण की पूजा कर मुरारे शब्द क्यों लिखा है, मुरारे में
गुजर मुरारे
स्थगित पूर्व भुजई भुजा रूपी उर्मी अथवा उर्मी रूपी उर्मी मैंने लहर रूपी भुजा के द्वारा कमल को तोड़ लिया और तोड़ करके उनके चरण में उपहार दिया, फिर के चरण में मुरारे मुरारे क्यों कहा, गोपियों की मुरारे की स्फूर्ति क्यों हुई, कृष्ण का की या और कोई दूसरा शब्द पर, अरे नहीं वहां पर ठीक फीट नहीं बैठे उसमें से एक शब्द भी कहीं दर्द हटा करके दूसरा शब्द करें तो सात अर्थ ही चौपट हो जाए। ये लोग व्यास जी सुखदेव गोस्वामी या ये बड़े बड़े जो राइटर्स होते हैं वो बड़े चून करके वो शब्द को रखते हैं। यहाँ पर मुरारी शब्द का अर्थ है मूर नामक अशुभ के अरे उसको मारे, पुराने के अनुसार में ये मुरारी मूर मूर को नारायण ने मारा या नारायण के किसी अंश ने मारा था, भगवत अवतार ने उनको मारा, देवताओं और दानवों और दैत्यों में देवताओं और असुरों में युद्ध, उसमें अमृत पीने के बाद में देवता लोग बलवान हो गए और दैत्यों को उन्होंने मारा, बहुत वैद्य लोग उसमें मारे, उसे ये वहां युद्ध छोड़ करके भागा, और भागने के बाद में ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या, ब्रह्मा जी कठोर तपस्या से समझ गए और वहां पर उपस्थित हुए, बोले जी क्या चाहता है, तो मैं ये चाहता हूं कि देवता लोग हम लोगों के वंश को भंश कर रहे हैं और हमें भी मारेंगे, इसलिए आप ऐसा कृपा करके हमें बर दीजिए, कोई भी हमसे असु दानव देवता यक्ष गंधर्व किन्नर कोई भी हो मनुष्य यदि हमसे लड़ने आए तो उसके ऊपर में मैं अपनी हथेली रख दूं तो साथ ही साथ जल करके मर अपने आप शत्रु मरण चल हथेली रख उन्होंने कहा वो मस्त जाओ आप तो लौट करके समस्त दानों में बलवान हो गए, देवता लोग उसके डर के मारे भाग में मनुष्य की तो बात अस्परा गंधर्व सभी लोग डर में, अब वो देखा जी देवताओं में सबसे बलवान जम है शासक भी, तो जम महाराज जी के पास में जम महाराज देख करके भगने लगे, कहे भगो मत भाई मैं आया हूं तुमसे लड़ने के लिए तो मैं आपसे लड़ नहीं सकता, तो एक बात करो हमको कुछ परामर्श दो हमारे जैसा कोई योद्धा को बतलाओ जिसे कि मैं लड़ सकूं, कहा योद्धा तो बतला दो अब लड़ना काम आपका, हमसे आपके छक्के छुड़ा देगा यदि उसे भेंट हो गई, आप नारायण से जाकर के लड़ सकते हरि से लड़ सकते, और जो कहां मिलेगा तो यही मुश्किल है, यही मुश्किल वो कहां नहीं है ये कहां नहीं जा सकता, तब उसको पाना बड़ा मुश्किल है, देखिए आप नारद इत्यादि से पूछ लीजिए वो कभी कभी जानते हैं आपको बतला देंगे, खोजते ढूंढते ढूंढते वो नारद से नारद कहे इस समय तो वो अपने लोक में लोक मैंने ब्रह्मांड के अंतर्गत कोई एक हरी लोक है रमा प्रिय वैकुंठ इत्यादि में होंगे, उसमें तुम जाओ तो वहां पर वो पहुंचे। कहते जे तुम कैसे आए भाई यहाँ, यहाँ तो आप तुम लोग का आना बड़ा असंभव है, तुम आ गया कैसे आए? तो खूब जोर से हंसने लगा, हंस करके बोला मैं आया आपसे लड़ने के लिए। लड़ने के लिए? हाँ लड़ने के लिए आपसे, हमसे संसार में कोई लड़ ही नहीं सका कोई भी। तो सब लोगों ने कहा, जब महाराज ने कहा है आप ही हमारे समकक्ष योद्धा है तो तू क्या लड़ेगा? बूढ़ा जैसा तुम्हारा हृदय कांप रहा है, देख करके धड़ कर रहा है, मैं सिर्फ भीरू का पुरुष और डरपोक आदमी से मैं नहीं लड़ू। मैं भीरू का पुरुष कहा, हमारा हृदय तो नहीं धड़क रहा है। अरे देख तो सही, दूसरों को देखने की क्या जरूरत, हम तो देख रहे हैं ऐसे ऐसे धड़पड़ कर रहे हैं हमारे दर्द, तो तू देख लो। तो सुन सचमुच में वो भूल गया भगवान की महस और यहां जहां रखा बस चला की चतुराई से उन्होंने उसको जला करके खत्म कर दिया। देवता लोग सुमन दृष्टि करने लगे, बड़े आनंदित हुए, आज प्रभु ने हमारी रक्षा। इसलिए यहां पर गोपियों ने किस रूप में मुरारी शब्द का प्रयोग किया है, शत्रु के विनाश के लिए गोपियां यहां मुरारी शब्द कृष्ण का के लिए दोहरा। हमारा भी शत्रु है, उसको आप बहुत दिनों से कष्ट पा रहे हैं, इसलिए इसको दूर कर दीजिए, इसे मार करके इसको। गोपियों का शत्रु कौन है कोई है? काम रोग है, हृदय रोग, ये बहुत दिन से हमको तंग कर रहा है और ये काम आप ही कृष्ण के प्रति है और इसलिए हम लोग बड़ी दुखी हैं, जर्जरित हो रही है। तो हम लोग आपका स्मरण करेंगे, इस काम को आप दूर कर दीजिए, इसे मार करके खत्म कर दीजिए, सदा के लिए हम निश्चिंत हो। इसलिए उनको मार शब्द का अमरकोश में अर्थ दिया है, मूल शब्द का प्रयोग है क्लेश संता काम भोगे च कर्मणा दैत्यभिः, मैंने चार प्रकार से इसका मूल शब्द का प्रयोग क्लेश के लिए भी होता है। क्लेश को दूर करने वाले को हम लोग जन्म जन्मांतर से इस संसार के चक्कर में पड़ेंगे भगवान को दूर। हमारा यही रोग है कि हम संसार में पड़े हैं और शूकर की भांति, जैसे शूकर बिछा तारा हो और आदमी को घृणा लगे, अरे ये शूकर बिछा तारा है, तो पत्थर लेकर तो उसको मारेंगे, भागो यहां से, तो पत्थर लगते हैं वहां से भागेगा तो फिर वहीं पर है, उसको अच्छा समझता है, पुष्टिकारक मनोहर सुख खाद्य मानो समझता है। और ये घृणी चीज, ऐसे ही संसार की सुख को हमारे शास्त्रों ने कहा दिया, ऐसे विषय के पुनः पुनः जन्म लेते हैं। और चर्बित चर्बनानम प्रहलाद महाराज, चर्बनानम मैंने चर्बत करके और फिर उसको फेंक देते हैं, फिर उसको जैसे कुत्ता क्या करता है, हड्डी एक ले लिया और उसको चिबाता है, उसमें रस तो है नहीं, फिर उसको निकलता है, फिर खाता है दांत और आसपास में तालू में कहीं छेद हो जाता है, उसको अपने आप रक्त गिरने लगता है और उसी को समझते वाह ये तो बहुत ही नमकीन बहुत ही सरस पदार्थ। ऐसे ही संसार में सुख नहीं है, खाब हड्डी के समान नीरस है, अपना ही कुछ खो करके तो उसमें से रस जैसा मालूम होता है, उसमें संसार और ईश्वर में कोई रस। बुद्धिमान पुरुष इसको समझ सब इसमें दुख ही दुख है, इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा कर दी कर। भगवान कृष्ण का स्मरण करने से भगवान उस मूल रूपी क्लेश को अविद्या को अथवा संताप, संताप मैंने भी वही अर्थ, संताप हम लोगों को कैसे है कृष्ण के खुल जाने से ही सरल होता है। और काम भोग संताप का मूल कारण यह काम भोग है। जहां कामना किसी प्रकार की हुई, किसी प्रकार की कामना, बस समझो जो दुख उसको है, बस भगवत भक्ति की कामना को छोड़कर किसी भी संसारिक सुख के लिए प्रयास कामना करें, ये देहात्म बुद्धि के कारण ही कामना है। और उस कामना से ही क्रोध होगा और क्रोध से बुद्धि विवेक नष्ट हो जाएगा और फिर क्या होगा, उसका विनाश। ये क्रोध किसको अधिक होगा, जिसको अधिक कामना है, जिसको भोगों की लालसा है उसी को। और क्रोध होने से बुद्धि हिताहित का ज्ञान नहीं होगा और हिताहित का ज्ञान नहीं से क्या होगा, विनश्यति। इसलिए काम ऐसा क्रोध है ऐसा रजोगुण सम, काम ऐसा क्रोध, जिस काम ये जो काम ये कर रहा है, ये काम हाँ अंगुली से पीता है ये काम, और इस काम से जो क्रोध उत्पन्न होता है यही हमारे समस्त दुखों का कारण और दुख कारण। इसलिए कामक भोगे काम का भोग, यहां पर किसी को कहा हृदय रोग, यह हृदय रोग हमें सता रहा है, आप मुरारे देती हैं, क्योंकि गर्गाचार्य ने कहा था कि कृष्ण के नामकरण के समय में नारायण सम, नारायण के सम गुणशाली, इसलिए मुरारी ने जब मुर नामक राक्षस को हत्या की तो हमारे हृदय रोग रूप जो रोग है जो असुर है इसको भी आप से भी दूर कर सकते हैं। इसलिए गोपियां उनसे प्रार्थना करती हैं मुरारी शब्द का। अधिक प्रेम है ये जमुना, एक साधारण रूप में एक नदी है, किंतु कृष्ण के दर्शन से उसकी वंशी ध्वनि सुनने से उनका स्पर्श करने से प्रेम का इतना सुंदर भाव सब इसको प्रकट हो रहा है। हम लोगों जैसा दुर्भाग्य इस विश्व में कोई नहीं, न तो जैसे जमुना जी कमल उपहार लेकर के सबके सामने उपहार देती हैं कृष्ण के चरणों में, हम ऐसा नहीं कर, न हमारे हृदय में ऐसी कम न्याय आएंगी और हम न तो उनके यहां तक हम आलिंगन कर सकते हैं और न हमें प्रेम का इतना आवर्त आता है, भाव आता है जो लज्जा को छोड़ दें, अपने धर्म को छोड़ दें, एकदम पागल बन जाए ऐसा कभी संभव पर नहीं। किंतु जमुना जी क्या करती, जमुना जी मानो पागल होकर के सबके सामने फूलों का उपहार लेकर के कृष्ण के चरणों में उनकी प्रार्थना करती है, उनको बस्तक्षल तक माने डुबो करके अपने पानी में मानो बस्तक्षल तक उनको आनंद करती है। ये प्रेम की जो युद्ध हम लोग कभी नहीं कर, हम लोग लज्जा के मारे लोक लज्जा और धर्मों के